आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है टोपी और इसके लेखक हैं संजय। संजय इस कहानी में गहरे सामाजिक सरोकार का वर्णन करते हैं। इस लोक कथा के माध्यम से राजतंत्र और लोकतंत्र का अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार राजतंत्र होता है और लोकतंत्र किस प्रकार का होता है, लोकतंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं और राजतंत्र में किस प्रकार की तानाशाही देखने को मिलती है। गौरैया की कहानी है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपना काम करवाती है दूसरे लोगों से और किस प्रकार राजा जो है अपना काम करवाता है। तो आइए पढ़ते हैं, इस कहानी को देखते हैं कैसी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। एक थी गौरैया और एक था गवरा, नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। एक गवरैया थी और एक गवरा, मतलब दो गौरैया, एक नर और एक मादा। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, जहां भी जाते थे साथ ही जाते थे, साथ में हंसते रोते खाते पीते और एक ही साथ सोते थे। अपने घोंसले से सुबह को साथ में निकलते थे दाना चुगने के लिए और शाम को एक साथ ही वापस आ जाते थे, अपनी थकान मिटाते थे और सारे दिन की बात एक दूसरे से कहते थे। एक दिन गवरैया बोलती है कि तुमने आदमी को देखा है, कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना अच्छा लगता है ना उन पर। तो गवरा कहता है कि खाक फफता है, मतलब कोई अच्छा नहीं लगता, बल्कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और ज्यादा बदसूरत लगने लगता है, क्योंकि उनकी जो खूबसूरती है वो ढक जाती है। और गवरा कहता है कि अब तू ही सोच, अभी तू मेरे सामने है तो तेरी जो भी रूप रंगत, जो भी तेरी आकृति है, तेरा रोआ रोआ सब मेरे सामने है, लेकिन अगर तू कपड़े से ढक लेगी अपने आप को तो तेरी सारी खूबसूरती तो छुप जाएगी, फिर तू कैसे खूबसूरत लग सकती है। तो गवरैया बोलती है कि मनुष्य केवल अच्छा दिखने के लिए कपड़ा नहीं पहनता, बल्कि कभी कभी मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। नेक्स्ट पेज 120। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में बड़ा भेद पैदा हो जाता है। गवरा कहता है कि नहीं, तू नहीं समझेगी, कपड़े पहनकर इंसान की जो ताकत होती है सर्दी सहने की, ठंड सहने की, गर्मी सहने की, बरसात सहने की, ये भी चली जाती है, क्योंकि हमें उनको सहने की आदत नहीं रहती। जितने ज्यादा हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं उतना ही फिर हम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक सर्दी में अगर आपने बहुत सारे कपड़े पहने हैं तो अगली सर्दी में भी आपको पहनने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ही गर्मी और बरसात की बात भी है। तो कहता है, और वो कहता है कि कपड़े पहनने में बहुत लफड़ा भी है, क्योंकि कपड़ा पहनने से पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। हर इंसान अपने स्तर के अनुसार कपड़े पहनता है, अमीर इंसान कुछ अलग तरीके के महंगे कपड़े पहनता है और गरीब इंसान साधारण कपड़े पहनता है। तो इस तरह आदमी को देखकर ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है कि ये कैसा आदमी है, कितना अमीर है, कितना पैसे वाला है। तो इस तरह से लोगों में भेदभाव भी पैदा हो जाता है, भेद पैदा हो जाता है कि ये आदमी कैसा है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह निरा पौंगापन है, गबरा बोला। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गबरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गबरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती नहीं एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत ही पड़। गबरैया कहती है कि फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है, रोज नए नए कपड़े सिलवाते रहते हैं। गबरा कहता है कि ये उनकी मूर्खता है। आदमी लिबास से सिर्फ अपनी लज्जा को ही नहीं ढकता है, बल्कि हाथ पैर जो जिनको ढकने की जरूरत नहीं है, जो काम करने के लिए हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटें होती हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपने लोग तो ऐसे ही अच्छे हैं, बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। गबरैया कहती है कि लेकिन टोपी उनके सिर पर बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। गबरा हंसता है और कहता है लेकिन तुझे टोपी मिलेगी कहाँ से, पता है टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलटता है, पता है जरा सी कोई गलती होती नहीं है कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सही सलामत रहे इसके लिए कितने और लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है। गबरैया कहता है कि अगर तू मेरी माने तो तू इस चक्कर में मत पड़। गबरा था तनिक समझदार इसलिए शक की, जबकि गबरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गबरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गबरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, गबरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गबरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। गबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है। गबरा समझदार था इसलिए वह स्वभाव का सक्की भी था। इसकी तुलना में गबरैया जिद्दी और धुन की पक्की थी। वह अपने मन में जो ठान लेती थी उसे करके ही मानती थी। वो एक कहावत है ना, जहाँ चाह वहीं रहा। इसका अर्थ है कि यदि किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो उसके लिए रास्ता भी मिल ही जाता है। रोज की तरह अगले दिन गबरा और गबरैया दोनों मिलकर कूड़े के ढेर पर चुगने के लिए निकले। जब दोनों कूड़े के ढेर पर खाने का सामान ढूंढ रहे थे, अचानक गबरैया को रुई का एक फाहा मिल जाता है। फाहा मिलते ही गबरैया मिल गया मिल गया मिल गया का शोर मचाते हुए खुशी के मारे कूड़े के ढेर पर ही लौटने लगती है। गबरा कहता है कि तेरे ही जैसा एक पागल और था, उसे रास्ते में कहीं चलते चलते चाबुक मिल जाता है और वो कहता है कि बस चाबुक तो मिल गया, अब बस तीन चीजें बची हैं, घोड़ा लगाम और जीन। लेकिन सोचो अब ये तीन चीजें तो रास्ते में पड़ी हुई मिलेंगी नहीं, तो और वो पागल अपनी सारी जिंदगी बस यही बोलता रहा कि तीन चीजें बची हैं, घोड़ा लगाम जीन। गबरा गबरैया को समझाता है और कहता है कि अभी तुझे सिर्फ रुई का फाहा मिला है, इस फाहे से टोपी बनाने तक का जो सफर है तू उसे जानती भी है कि क्या क्या होता है। ये रुई का फाहा मिलने से तेरी टोपी बनने का क्या संबंध है, कैसे बन जाएगी फाहे से तेरी टोपी, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गबरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भैये, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूं। गवरैया गौरैया से बोलती है कि बस अब तुम देखते जाओ कि मैं इस फाहे से टोपी कैसे बनवाती हूँ। और वो धुनिये के पास जाती है और उसे कहती है कि धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था और ठंड का मौसम था, उसके शरीर पर वर्षों पुरानी बस फटी हुई एक मिर्जई पड़ी हुई थी और वो कांपते हुए कहता है कि तू यहाँ से जाती है या नहीं, देखती नहीं, मुझे अभी राजा जी के लिए रजाई भी बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो काम के ठीक से दाम भी नहीं देता, और ऊपर से तू आई है फ्री का काम करवाने, फ्री की रुई धुनवाने। तो गौरैया कहती है कि भैया उज्र ना करो, मैं तुमसे फ्री में कोई काम नहीं कराऊंगी, बल्कि काम की पूरी मेहनत दूंगी, इसे धुन दो और आधी तुम ले लेना, आधा मैं ले लूं। धुनिये को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया, घर चौं हर चौं उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरैया ने। जब गवरैया ने उसे बताया कि वह मजदूरी में उसे इस धुनी हुई रुई का आधा हिस्सा दे देगी तो धुनिया खुश हो गया। उसे अपने जीवन में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में से 8 आने मजदूरी तो उसके लिए एक सपने के समान थी। रुई का आधा हिस्सा मिलने का प्रस्ताव मिलते ही धुनिया रुई धुनने के लिए एकदम तैयार हो गया। उसकी ताती में से रुई धुनने की घर चौं की आवाज आने लगी। यह अच्छी मजदूरी मिलने का लालच था जिसके कारण उसने बड़े मन से रुई धुनी। जब पूरी रुई धुन गई तो गवरैया ने उसमें से आधी रुई खुद रख ली और आधी धुनिया को दे दी। इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक गुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है, गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, राजा जी के लगुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। धुनने के बाद गवरा और गवरैया के मन में उत्साह और बढ़ गया और वो कोरी के पास पहुंचे और उससे कहते हैं कि कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर भी झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा पहन रखा था और वो बड़ी अनिच्छा से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं, देखते नहीं हो, मुझे अभी राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। वह कहता है कि वो पहले से ही मुफ्त में काम कर रहा है, ऊपर से वह भी मुफ्त में काम करवाने के लिए आ गई है। गवरैया कहती है कि इस देश में क्या सारे काम सिर्फ राजा के लिए ही होते हैं। तो कोरी कहता है कि तू कहाँ से आई है, तुझे नहीं पता क्या कि यहाँ पे सारा काम जो है राजा की ही मर्जी से होता है। खट मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग, कि बैल हल चलाते चलाते मरता है, सारा काम बैल करता है और बैठकर आराम से खाता कौन है, घोड़ा। यही यहाँ पर भी वही राज चलता है, काम कर करके हम लोग पिसते हैं और बैठकर राजा लोग खाते हैं। वो कहता है कि यहाँ सब कुछ राजा जी के लिए ही होता है, और फिर राजा के साथ और लोग भी तो बहुत हैं, उनके मंत्री और चेले चपाटे और जो उनकी सेना है, ये भी बहुत लोग हैं, तो इनके भी बहुत सारे काम होते हैं, बस इन्हीं का काम कभी खत्म नहीं होता। तो गवरैया कहती है कि ठीक है, मना मत करो, हम तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। वो कहती है कि इस सूत को काट दो, आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। गवरैया ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह इस रुई से जितना सूत काटेगा उसका आधा सूत वह उसे मेहनताने के रूप में दे देगी। ये सुनकर कोरी ने बहुत बढ़िया महीन और लच्छेदार सूत काटा। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कोरी को भी इतनी अच्छी मजदूरी कभी नहीं मिली थी, और इतनी अच्छी मजदूरी पर काम ना करना तो मूर्खता ही है। इसलिए वह एकदम से सूत काटने पर लग गया और उसकी मशीन भी चरखी भी ताता थैया करने लगी। उसने काफी महीन अच्छा और लच्छेदार सूत काट कर दिया और गवरैया ने उसे मेहनत ताने के रूप में आधा सूत कोरी को दे दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उत्साह दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें देखकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। नेक्स्ट पेज 123। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजो कर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करघा चलने लगा, धर की ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया, आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। महीन और लच्छेदार सूत लेकर गवरैया बुनकर के पास गई। बुनकर राजा के लिए मुफ्त में बागा बुन रहा था। गवरैया ने उसके आगे प्रस्ताव किया कि यदि वह उस महीन लच्छेदार सूत का कपड़ा बुनेगा तो वह उस कपड़े का आधा उसे मेहनताने के रूप में दे देगी। ये सुनकर बुनकर खुश हो गया और उसने काफी गफस और दबजी कपड़ा बुनकर दिया। उसने उन्नत दर्जे का घना मजबूत और मोटा कपड़ा बुना। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ लेना न देना भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गवरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार ना होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। कपड़ा बन जाने के बाद गवरैया दर्जी के पास जाकर बोलती है कि उसे इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी बनवानी है। दर्जी ने उसे बताया कि अभी वो राजा की 7वीं रानी से जो 10वां बच्चा हुआ है, जो लड़का हुआ है, उसके लिए झब्बे तैयार कर रहा है, इसलिए उसके पास ये फ्री का काम करने का वक्त नहीं है। इस पर गवरैया ने उसके सामने भी वही प्रस्ताव रखा कि वो एक टोपी सिले, जबकि बल्कि 2 टोपी सिल दे, और इस 2 टोपी में से एक टोपी वो मुझे दे दे और एक तू खुद रख लेना। ये सुनकर दर्जी भी खुश हो जाता है और वो 2 टोपियां सिल देता है और गवरैया वाली टोपी में अपनी खुशी से 5 फुंदने भी लगा देता है। इतनी सुंदर टोपी पाकर गवरैया खुशी से झूम उठती है। उसने वह टोपी गवरे को दिखाई तो उसने भी कहा कि अरे, इस टोपी को पहनकर तो तू बिल्कुल रानी लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। गवरैया कहती है कि रानी मत कहो, राजा कहो, अब तो कोई राजा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर गवरैया को एक नई चीज सूझती है। वो सोचती है क्यों ना एक बार राजा को भी देख लिया जाए, जिसके लिए यहाँ के सारे लोग इतने सारे काम करते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी और वो उड़कर राजा के महल के कंगूरे पर दीवार पर जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट पेज 124। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया राजा के महल की दीवारों पर जाकर बैठ जाती है। उस वक्त राजा जो है वो अपनी मालिश करवा रहा था, वो अधनंगा था और उसका सिर भी नंगा था, सिर पर भी उसने कुछ नहीं पहन रखा था और उसके कई सारे लोग लगे हुए थे उसकी सेवा करने के लिए। कोई उसकी उंगलियों को चटका रहा था, फोड़ रहा था, कोई उसकी पीठ पर मुक्की मार रहा था, कोई मालिश कर रहा था, कोई पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुनने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुद्दी, गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाने लगती है कि मेरे सिर पर तो टोपी है लेकिन राजा के सिर पर तो टोपी नहीं है। राजा का सिर ये देखकर चकरा जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि जल्दी से मेरी टोपी लेकर आओ। राजा की टोपी आ जाती है और वो जल्दी से उस टोपी को पहन लेता है और फिर गवरैया से कहता है कि देख मेरे पास भी टोपी है, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया, राजा की टोपी में 1 भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में 1 भी नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। जब राजा ने टोपी पहन ली, गवरैया ने एक नया राग अलापना शुरू किया, उसने एक नई बात पकड़ ली। अब वो कहने लगी कि मेरी टोपी में 5 फुंदने हैं और राजा की टोपी में फुंदने नहीं हैं। राजा को ये सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है, एक राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया की इतनी मजाल। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि बस इसकी गर्दन मसल दो, इसके पंख नोच लो, सिपाहियों देर ना करो, इसे जल्दी से पकड़ लो। खबा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। मंत्री कहता है कि महाराज इसे छोड़ दीजिए, मच्छर मारकर अपने ही हाथ क्यों गंदे करने, ये स्वयं ही उड़ जाएगी। तब राजा कहता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी, एक काम करो, इसकी टोपी छीन लेते हैं, मैं उसे अपने पैरों से ठोकर मारूंगा, उसे कुचल दूंगा। एक सिपाही ने गुलेल से गवरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया और दूसरे ने उसे तुरंत उठा लिया और राजा के सामने उस टोपी को पेश कर दिया गया। राजा उस टोपी को पैरों से मसलने ही वाला था लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाता है और वो सोचता है कि मेरे राज में इतनी खूबसूरत टोपी मेरे अलावा किसी और इंसान के पास कैसे हो सकती है, ये टोपी आखिर मेरे लिए क्यों नहीं बनाई गई, मेरे पास ऐसी टोपी क्यों नहीं है, किसी और एक मामूली चिड़िया के पास ऐसी टोपी क्यों है। और वो उस टोपी की खूबसूरती को उलट पुलट कर देखने लग जाता है। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता ना चले गिरते पड़ते दर्जी हासिल हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई, मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। राजा कहता है कि इतनी अच्छी टोपी, इतनी उत्तम किस्म की टोपी आखिर इस देश में बनाई किसने। अब राजा ने पूछा है तो पता तो चलेगा ही। तुरंत कारीगर की खोज की गई, दर्जी को पकड़ लिया गया और उसे दरबार में हाजिर किया गया। दर्जी कहता है कि दुहाई अन्नदाता, राजा कहता है कि इतनी अच्छी टोपी, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा बादलों की तरह गड़गड़ाता है, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार। राजा दर्जी से कहता है कि हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ कि तुमने ऐसी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो दर्जी कहता है कि कपड़ा ही बहुत अच्छा था, बिल्कुल मोटा, मजबूत और घना। राजा कहता है कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की तरह फूंक मारते हुए राजा बोलता है, अब गिरते पड़ते दरबार में बुनकर हाजिर होता है।
वो भी कहता है कि माफ करे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। मुनकर कहता है कि महाराज माफ करें, तो राजा कहता है माफी नहीं वजह बताओ। मुनकर भी कहता है कि सूत बहुत उम्दा था, एकदम बढ़िया, एकदम महीन और लच्छेदार। अब राजा शेर की तरह दहाड़ मारता है और कहता है कि इतना महीन सूत काटा किसने? गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अब कोरी हाजिर होता है, वो भी महाराज से कहता है कि महाराज जान बख्श दे। राजा कहता है कि जान नहीं, सिर्फ हमें वजह बताओ कि आखिर तुमने इतना बढ़िया सूत कभी हमारे लिए क्यों नहीं काटा। तो कोरी कहता है कि महाराज रुई ही बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई धुनी किसने? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। अब राजा बिजली की तरह कड़कता है और कहता है कि इतनी बेहतरीन रुई, इतनी बढ़िया रुई आखिर धुनी किसने? हाफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ, खमा अन्नदाता, खमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था, तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। अब दरबार में धुनिया हाजिर होता है और वो भी महाराज से माफी मांगता है। राजा कहता है कि माफी नहीं वजह बताओ, और राजा गुस्से से कहता है कि तुम चारों ने ही मिलकर इस गवरैया का काम किया है और इतना बढ़िया काम कभी आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए क्यों नहीं किया? दुनिया कहता है कि महाराज हमने आपके लिए भी काम किया है और आगे भी हमेशा आपके लिए ही काम करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले अब बताओ। राजा कहता है कि लेकिन तुम सब ने अभी तक मेरे लिए जो काम किया है उसमें कभी इतनी साज सज्जा क्यों नहीं आई? इतना साफ सुथरा और संवरा हुआ काम तुमने आज तक कभी मेरे लिए क्यों नहीं किया? दुनिया कहता है कि महाराज अगर अभय दान दे तो बताऊं, अगर आप ये दान दे कि आप दंड नहीं देंगे या कोई दंड नहीं देंगे तो मैं बताऊं। राजा कहता है कि ठीक है चलो, अभय दान दिया अब बताओ। महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं फिर भी यह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। दुनिया कहता है कि महाराज इस गवरैया ने जो भी काम कराया ये उसका आधा हिस्सा दे देती थी, आखिर जिसके पास सब कुछ है वो हमें कुछ भी नहीं देता। मतलब राजा जिसके पास सब कुछ है उसने कोई काम करवाने के लिए कभी किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है गवरैया वो हर काम करवाने के लिए उसका आधा हिस्सा इन्हें काम करने के लिए दे देती थी, इसीलिए काम में अपने आप ही नफासत आ गई, काम अपने आप ही अच्छा होता चला गया और दुनिया इसके लिए बार बार जमीन पर लेट कर महाराज से माफी मांगे जा रहा था और प्रणाम किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये, गवरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। गवरैया फिर चिल्लाने लगती है कि राजा अपनी आंखें खोल कर देख ले, इस टोपी की पूरी कीमत चुकाई है मैंने, फ्री की नहीं है, मुफ्त का माल नहीं है ये टोपी। और वो कहती है कि मुझे लगता है ये राजा तो बिल्कुल कंगाल हो गया है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इसके पास तो एक टोपी भी नहीं है, तभी तो इसने मेरी टोपी तक छीन ली है। राजा तो वाकई अकबका गया था, एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था, इतना ऐसो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। राजा ये देखकर भौचक्का रह जाता है, एक तो सारे कारीगरों ने उसकी मदद की, इतनी अच्छी टोपी उसके लिए बनाई, और दूसरा उसकी जो टोपी थी वो गवरैया की टोपी से कम खूबसूरत थी, बल्कि उसके सामने खूबसूरत ही नहीं थी, गवरैया की टोपी बहुत खूबसूरत थी, और तीसरा उसके खजाने की पोल खुल रही थी, इससे कैसे पता चल गया कि राजा का धन जो है वो घट रहा है। बहुत बेगार करवाने, मतलब बिना पैसे दिए फ्री में काम करवाने, और बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बाद भी राजा का जो खजाना है वो खाली हो रहा था, क्योंकि जितना ऐशो आराम और ऐशोआराम की जिंदगी वो जी रहा था, इस सब का बोझ उठाना खजाने के लिए मुमकिन नहीं था। आखिर इतने ऐशोआराम का बोझ खजाना कैसे संभाले, इसलिए खजाना खाली हो रहा था। पेज 127। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, मेरा डरपोक मुझसे डर गया, तभी तो इसने टोपी लौटा दी। तब तक ये सब तमाशा देखने के लिए वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, कई सारे लोग आ गए थे। तो मंत्री कहता है कि महाराज ये तो मुंहफट है, ये आपको बिल्कुल बेपर्दा नंगा ही कर देगी, आपकी पोल पट्टी जो है वो सबके सामने खोल देगी। राजा भी घबरा गया था, इसलिए कहता है कि इसकी टोपी इसे वापस कर दो। सिपाहियों ने राजा के कहने के अनुसार कार्य किया, टोपी को कंगूरे की तरफ हवा में उछाल दिया गया। गवरैया ने टोपी पहन ली और चारों तरफ उड़कर कहने लगी कि ये राजा तो डरपोक है, पूरा डरपोक, मुझसे ही डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी वापस कर दी। कितना डरपोक है ये राजा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। राजा कहता है कि अब इस मुंह फट के मुंह कौन लगेगा, इससे कौन बहस करे, क्यों मंत्री जी, यही सही है ना, और ये कहकर राजा अपनी टोपी को कसके पकड़ लेता है। आखिरकार गवरैया ने राजा की सारी पोल पट्टी जो थी वो सबके सामने खोल कर रख ही दी थी। उसने बता ही दिया था कि राजा किस तरह का इंसान है, वो सभी से मुफ्त में काम करवाता है, सभी से इतना ज्यादा कर वसूलता है, और इसके बाद भी उसका जो खजाना है वो खाली हो रहा है, क्योंकि वो सारा पैसा अपने ऐशो आराम में अपने खुद के स्वार्थ के लिए उड़ा देता है। आपने इस कहानी में देखा है कि जब भी आप कोई मुफ्त का काम कराते हैं तो वो इंसान खुशी से काम नहीं करता है, इसलिए वो काम खुद से ही अच्छा नहीं होता। जबकि किसी इंसान को जब उसके काम करने के, उसकी मेहनत के पैसे मिलते हैं, सही दाम मिलता है, तो वो इंसान उस काम को खुशी से करता है और वो काम अपने आप ही, जो काम खुशी से किया जाता है वो काम अपने आप ही अच्छा होता है, तो उसमें खुद से ही श्रेष्ठता आ जाती है, वो काम खुद से ही बहुत अच्छा होता है जब कोई काम आप खुशी से करते हैं। तो इसी तरह गौरैया ने जितने लोगों से भी काम करवाया वो काम खुद ही अच्छा हो गया, क्योंकि उसने सबको उनकी एक अच्छी कीमत दी थी, अपने काम करवाने की अच्छी मजदूरी दी थी, मेहनताना दिया था, जबकि राजा उन लोगों को कुछ नहीं देता था। इसीलिए गौरैया की टोपी राजा की टोपी से कहीं ज्यादा अच्छी थी। तो कैसी लगी आपको ये राजा और गौरैया की कहानी? इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर्स आप सभी कर सकते हैं आराम से, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो और ये यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं इस बुक के, तो बस पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करिए, सभी पार्ट अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चन आंसर्स बढ़िया से तैयार करिए और उन्हें याद कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।